SNS lawyers ਕੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS lawyers ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
حکومت انٹیریو کا اعلان، ہماری احتیاطیں اور کوششیں بہتری لا رہی ہیں، درمیان میں فاصلہ اور میل ملاپ کی دوری، یہ احتیاط کارگر ثابت ہوئی ہے۔ اس وقت لازم ہے ہمت نہیں ہارنی، اس مضی بیماری کو بڑھنے سے روکنا ہے۔ اگر سفر بہت ضروری ہے، اپنے اور مسافروں کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں، اپنے دوستوں خاندان کے افراد اور کمیونٹی کو خطرے سے بچائیے، ساتھ دیجیے، زیادہ وقت گھر پہ گزاریں، ہمت نہ ہاریں، مضبوط رہیں، فرض نبھائیں۔ معلومات کے لیے Ontario.ca/coronavirus. Ishtihar Munjanib, Hukumat Ontario.
A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
آپ کینیڈا سے پاکستان پیسے بھجوانا چاہتے ہیں اور وہ بھی فوراً، زبردست ریٹس کے ساتھ اور آرام سے گھر بیٹھے، آپ کو یہ سب ملے گا بغیر کمپرومائز کے۔ ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے زوم منی ٹرانسفر ایپ فروم پے پیل،
دیٹس XOOM زوم،
اور اپنے موبائل سے پیسے بھیجیے امیزنگ ایکسچینج ریٹس کے ساتھ، بینک ڈپازٹس، کیش پک اپ یا موبائل ریچارج۔ اب پاکستان پیسے بھیجیں انگلی کے اشارے سے، زوم اب پے پال سروس، تیز، آسان اور محفوظ منی ٹرانسفر۔
انشور پرو فائنینشیل سروس سے فضل ودو، جن کا ہے 27 سال سے لائف انشورنس انڈسٹری کا ایکسپیرینس۔ آج کل کے دور میں تو کچھ بھی فری نہیں ملتا، ایون مشورہ بھی۔ سوال چھوٹا ہو یا بڑا، آپ کال کر لیجئے، مشورے کی کوئی فیس نہیں۔ چاہے لینی ہو لائف انشورنس، کریٹیکل، ڈسیبلٹی، ٹریول اور ادر انشورنس، ٹیکس پلاننگ اور ریٹائرمنٹ پلاننگ کے لیے دیر نہ کریں کہ اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ فضل ودود کو کال کر لیجیے 647-286-4285، 647-286-4285۔
ہیئر میکس لے کر آئے ہیں الٹیمیٹ ہیئرنگ سولوشن ود ورلڈ اسمالسٹ ایڈوانس اینڈ ڈیجیٹل ہیئرنگ ایڈز، وہ بھی سب سے کم قیمت میں۔ کسی بھی ہیئرنگ ایڈ کی خریداری پر بنا کسی فکر کے 3 سال کی وارنٹی بھی حاصل کیجیے۔ فری، نو اوبلیگیشن ہیئرنگ ٹیسٹ کے لیے آج ہی کال کیجیے ہیئر میکس۔ سرو کرتے ہیں جی ٹی ایم میں 2 لوکیشن سے،
جین ایگلنٹن یا پھر دنداس ایرنڈیل کے انٹرسیکشن پر۔ 416-792-8792 ہیئر میکس 416-792-8792۔
السلام علیکم، میں شباہت علی فرام میگا منی ایکسچینج۔ ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا فون نمبر ہے 905-279-4754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوتھرا روڈ، مسیساگا۔
ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ، دانت نکلوانے ہیں، لگوانے ہیں، کراؤنز ہیں، بریجز ہیں، ایون امپلانٹس یا بریسز لگوانا چاہتے ہیں تو برامپٹن میں ہینسن اور کوئنز کے انٹرسیکشن پہ، اور اب سگما ڈینٹل کلینک ولیمز پارک وے اینڈ کرائسلر کے انٹرسیکشن پہ۔ بہترین ڈینٹسٹ تمام انشورنس پلان کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ بنائیے گا، ساز و آواز کا حوالہ دے کے ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے گا۔ ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ، 9054578661۔
قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام، محمد صدیق، آل دا سولوشن، پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا۔
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی، انسالوینسی، کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80%۔ محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں، پرسکون زندگی، اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن۔ اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے، قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577۔
ہیلو، گڈ آفٹرنون ٹو ایوریبڈی۔ سنگا صاحب تسی ساڈے نال ہو؟ ہیلو،
السلام علیکم جی۔ السلام علیکم
جی۔ جی السلام علیکم، ست سری اکال جی۔
ساڈے سارے سروتیاں نو، سب نو بہت بہت السلام علیکم اور رمضان دیا بہت بہت مبارکاں۔
تھینک یو ویری مچ جی۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب رمیش سنگا صاحب، لبرل ایم پی ہیں برمپٹن سینٹر سے، तो हम उनसे आज कुछ बातें करेंगे। संगा साहब, अब ये जड़ी लिबरल गवर्नमेंट है, कम तो बड़ा चंगा कर रही है, हर सैक्टर का ख्याल कर रही है, बड़े पैसे जड़े सारू ने सारे दे रही है। अज भी उन्होंने कहा कि जड़िया लार्जर फर्म्स ने उन्होंने असी ज्यादा जड़े ने बेनीफिट्स देंगे, तो तुम प्लीज़ कुछ रोशनी पाओ इस गल उत्ते कि यह जड़े इतने ज्यादा जाहिर है कि मुश्किल वक्त जड़े हर सैक्टर पैसे दिते जा रहे हैं, तो इसकी रिकवरी का फिर तरीकाकार की होएगा?
देखो जी, जेड़े ता बिजनेस नू पैसे मोस्टली दिते जा रहे हैं, इन्होंने विचों ओ ता उन्हां नू लोन हैगे ने, वड्डे वड्डे बिजनेस जिन्ने भी आ, ये लोन की शेप च आ, उन्होंने पहले ही दस दिता जाता है कि जेड़े पैसे जेड़े लोन की शेप च आ, लोन की शेप च आ, कितने ओहदे विचों किन्ना तुहानू माफ। चलो मसलन मैं एक तुहानू एग्जाम्पल दिंदा, जिदा आपां समॉल बिजनेस नू 40,000 दी रिलीफ दिती है कि तुसीं 40,000 लोन लै सकदे आ, पर उहदे विच इह कहा गया कि देखो तुसीं इह लोन लै लो, लोन लैके जे तुसीं इह इन्ने पीरियड दे विच 2020 तक वापस देने दिसंबर तक, तो तुहानू 25% इहचों रिटर्न ऑफ हो जाऊगा, ठीक है जी, रिफंड नॉन रिफंडेबल आ हूं, तो ये बाकी का जिहड़ा वह अपने बिजनेस के उत्ते सारा उतार जो। एक्चुअली शाजिया जी, मेन मतलब की है कि आप चाहते हैं कि वी वॉन्ट टू कम बैक टू द स्टेज वेयर वी वार इन द बिजनेस, कहना गवर्नमेंट इज सिटिंग हियर बिहाइंड द पीपल, बिहाइंड द कनेडियंस और बिहाइंड द कनेडियन बिजनेसेस, कि इनको ऊपर कैसे लाया जा सकता है फिर से दोबारा, क्योंकि एक बार हम पीछे को हट गए हैं कोरोना की वजह से, यही चाहते हैं कि हम उसको वापस फिर उसी स्टेज पर आ जाएं और बिजनेस उसी तरह के चहल पहल में चलते रहें, इसलिए उनको ये इंसेंटिव दिए जाते हैं।
अच्छा सिंगा साहब, बड़ी अच्छी गल है और असी तो बड़ी तारीफ करने हैं लिबरल गवर्नमेंट की, कि इस वक्त उत्ते उसने जरूर लोगों अपने आदा हाथ पकड़िया है हर सैक्टर दे विच, लेकिन ये गल भी है वे कि तुहानू नहीं लगता कि आने वाले दिनों दे विच तुहाडे ते मेरे जिहड़े टैक्सिस ने बहुत वध जाणगे, क्योंकि बिजनेसिस बहुत सारे शट डाउन हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा वध गया है, तो फिर इकोनमी कैसे चलेगी, क्योंकि छोटी है ना इकोनमी, एडी वड्डी है नहीं।
ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹੀ ਜੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ $2,000 ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਘਾਪਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਪਜ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਜੀਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਗਈ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਰ
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪੰਤੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਇਰਸ ਵਰਚੁਅਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ, 338 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੇ ਕੱਢਣਾ ਪਊ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਕਮੈਂਟਸ। ਆਖਰੀ ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਪਏ?
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਤਗੀਜ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 550 million ਸਾਜੀਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਡੀਆ, ਆਰਟ, ਕਲਚਰ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਈਮੇਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਿਸ ਟੂ ਦਾ ਲਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਈਵਨ ਰਿਟਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ, TV ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਯੋਰ ਵਰਡ ਫੋਰ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਆਨ ਏਅਰ।
ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੱਥ ਤੇ ਕਹੀ ਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮੇਲ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਲੋਰਡ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ
ਦੂਸਰੀ
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਰੀਅਲੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ।
ਥੈਂਕ ਯੂ,
ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ।
ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ
ਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
9057909211 ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਰਮੇਸ਼ ਡੋਟ ਸਾਗਾ ਐਟ ਪਾਰਲ ਡੋਟ ਜੀ ਸੀ ਡੋਟ ਸੀ ਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਮਕਸਦ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਸੁਝਾਅ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਏ ਸ਼ਾਊਟ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ ਫੋਰ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਸ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ।
ਨਹੀਂ 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 ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਂਡ ਯੋਰ ਕਮੈਂਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਬਾਏ ਬਾਏ। جی ہم کچھ سپانسرز کے پیغامات دیتے ہیں اور آپ کے پاس پھر سے واپس آئیں گے سارا سنگھ کے انٹرویو کے ساتھ۔
کیا آپ یا آپ کی فیملی ڈیتھ، ڈسیبلٹی یا کریٹیکل النس جیسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو سن لائف کی پردیپ جی کا نام یاد رکھیے گا 416-894-5872۔
جی ہاں، صلاح مشورے اور کسی بھی پالیسی کے ریویو میں میں پردیپ سنگھ آپ کی پوری مدد کروں۔
ٹرسٹ وردی آنےسٹ چارٹرڈ لائف انڈر رائٹر اینڈ کینیڈین ہیلتھ اسپیشلسٹ مسٹر پردیپ فرام سن لائف 416-894-5872۔
اور ہر منڈے کو میرے ٹاک شو میں ضرور شامل۔
ایشین فوڈ سینٹر 905-793-1338، آپ کے کچن کی تمام ضروریات ایک ہی چھت تلے، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، گروسریز اینڈ سٹیپلز، بریڈ، ڈیری اینڈ ایگ، بیوریج اینڈ کنفیکشنری، برانڈیڈ فوڈز، پرسنل کیئر اینڈ ہاؤس ہولڈ، سویٹس اینڈ سموساز۔ Order now for in-store free pickup 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center 905-793-1338. Asian Food Center.
ہیلو جی، ہم واپس آ چکے ہیں جناب، اور اب ہم آپ کی بات کروائیں گے اور ایک ملاقات کروائیں گے ہماری این ڈی پی کی جو ایم پی پی ہیں، برمپٹن سینٹر سے ہی ہیں وہ، 25 این ڈی پی ایم پی پی اور سارا سنگھ، ان سے بات کرائیں گے، اور بہت ہی پیاری ہیں، اور جب بھی ہم ان کو بلاتے ہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو تو وہ ہمیشہ آ جاتی ہیں۔ سارا، ہاؤ آر یو؟
I'm doing so well. Thank you so much for having me on. How are you doing?
Very well. Thank you very much, Sarah. Sarah, we saw your Eid message. It was so beautiful and you were looking so pretty, covering your head and all clad up in traditional dress. You looked very pretty, I must say.
Oh, thank you so much. It was an honor to send greetings. I know, you know, Ramadan and Eid is looking very different for our communities this year with everything that's going on. And so it was my pleasure. And, you know, I really enjoyed, you know, sort of going through that process of, you know, getting dressed up. And, you know, it really just makes you appreciate the culture and all that our sisters also have to go through when they're getting ready every single day.
Yes. Okay, Sarah, there are a couple of things that we would like to discuss today. You are an opposition party that has emerged very successfully over the years, and especially in Ontario. What are the main policies that during this pandemic you are discussing with Ontario government, and how far they have been catered for? So please shed some light.
Yes, no, of course. So, you know, one of my roles is, yes, I serve as the deputy leader of the official opposition here in Ontario, in addition to being the member of provincial parliament. And, you know, I think, you know, we have all globally experienced this COVID-19 pandemic. And, you know, we've seen different governments, you know, take up different types of policies. And as opposition, we have tried to work collaboratively with this government here in Ontario to, you know, ensure that nobody is left behind. That is the role of opposition, is to point out where there are concerns. And so, you know, we've heard from small businesses in our communities who are looking for, you know, assistance with rent relief. Many have had to close their doors, and they simply haven't had that support from the government. The NDP put forward a proposal called Save Main Street, which is specifically about those small businesses and looking at what supports they need. We've also called on this government to launch a public inquiry into the long-term care homes here in the province. I think this is where we've seen this pandemic hit our communities the hardest, in those long-term care homes and in those vulnerable settings. Now, the long-term care crisis has been, you know, something that's been going on here for decades. This is not a new problem. But with the COVID-19 pandemic, we saw the system just go into crisis mode. And so we've asked the government to look into what has caused, this years of neglect, underpaid staff, and caused the problems that we saw come to light here during the pandemic. Unfortunately, the government doesn't feel that a public inquiry is necessary. They are going to launch their own investigation led by the government into the government's actions in the past. So we don't think that that's going to help us solve and be proactive in terms of addressing that problem.
Okay. Please go ahead. Sorry.
No, I was going to say, for everyday Ontarians, just life has become almost unaffordable. That was a problem before. We have increasing poverty rates here in the province of Ontario. But the other thing that we really tried to push this government to do was to ensure that people had appropriate income support in addition to what the federal government was doing and providing. They could provide additional emergency basic income supports, but also take care of the bills that people have that are accumulating, auto insurance, for example, hydro rates. This, for example, were initiatives that the government could have put in place to help Ontarians. And as an opposition member, I think that the government really did fall short in some of those areas.
Yeah, there is a concern, Sarah, that post-pandemic, once things open up at a faster pace, because there are no businesses, people are unemployed, and it doesn't seem that all those businesses that were shut down are going to start once again. So does the NDP has any plan how to run the economy and how to take care of the fate of the people once this whole thing is, not 100% over, but whenever the government decides to open in a way that, work can be resumed in a reasonable manner. So what is NDP's strategy? Do you have any strategy that you can discuss with the government?
Absolutely. And we have tabled those proposals as well with the government. I think it's very important to acknowledge that it's going to take some time before we get back to a quote-unquote normal here in the province or in the country, frankly. And, for many of those businesses, they will not be able to return to normal. And so we have suggested to the government that we need to create plans that will help those businesses flourish post pandemic, and that starts with perhaps looking at some debt forgiveness. Many of them have closed their doors. They're unable to earn an income. So even as the government has proposed deferring those rents a few months, it's just not sustainable. So that was one suggestion that we made, is that there needs to be a real program here to help those small businesses to get back on their feet. For Ontarians, I think this, we should look at what economic recovery is going to look like in our province as an opportunity now to, create new jobs for people. And so we have proposed, looking at transforming the economy in a new direction by creating jobs perhaps more in the green sector. There's an opportunity here. But we have to get back to some kind of economic stability, but in order to do that, we cannot jeopardize the health and safety of the province, because we will then send ourselves back into a second, potentially third wave and experience of this pandemic, and we want to avoid that. So economic recovery is going to require supporting not just the large businesses, but those small businesses who have particularly been hit hard, making sure that we also provide adequate child care. Remember, parents are at home right now, many of them taking care of their children. If there is not adequate child care in place, many of those parents cannot return to work when we do reopen the economy. So those elements we have proposed to the government, in addition to many other suggestions.
Okay, one of the greatest thing that we have heard in the last few days, being a journalist, of course, there have been very good things that we have seen the government, take really head on. But one of the things from NDP was that NDP was perhaps the first political party that raised the issue of also taking care of ethnic media. And I received a press release from your NDP office, and they said that we are proposing to the government. So I am, of course, you only, represent the provincial parliament, but I'm just asking, I'm taking this liberty to ask you, is your leadership at the federal level also asking the federal government to look into the woes of ethnic media? Because definitely our advertisements have been slashed by 75%. If you understand how difficult sustenance is.
Oh, absolutely. I think for, us here at the provincial level, I can speak to that. It's very important to understand what those economic impacts look like. And as you've outlined, a cut of 75%, there's no way you're ever going to make that up, right? And that's why we have proposed that, a part of the $10 million that was being allocated to COVID advertising, that a portion of that be also provided to the ethnic media. Ethnic media, whether it's Punjabi, Hindi, Gujarati, whatever ethnic media it might be, these are the lifeblood of our communities, especially for the ethnic communities, to connect, to hear what's going on, to know what's going on in our communities. And so we proposed that because we understood this was an area that the government was not prioritizing. This is a part of the economic recovery, right, that we're talking about and ideas that we proposed. It's going to require redirecting funds to areas that need them. And the ethnic media is one example. Unfortunately, we haven't seen the government necessarily take that proposal and move it forward, but we will continue to push them to ensure that, small businesses like our ethnic media outlets, many of them who are independently owned and operated, can continue to thrive. And so for us as the NDP, those are the types of issues we've tried to put on the government's agenda any opportunity that we can.
Yeah, okay. And absolutely the last question, you might have seen that Enbridge has increased its rates in these days when people don't really have jobs and they are on government, aid. And did you by any chance raise this issue in the parliament, asking the premier why the government did not negotiate with them? This was not the right time. Why the rates were increased?
Absolutely. I think, energy rates here in the province of Ontario, this has been an ongoing issue for us. And we've seen those rates, rise while people's incomes haven't. And that's been a big problem where people are choosing between, hydro and eating. They shouldn't be doing that. And so we definitely, throughout the pandemic, signal to the government that they need to regulate the rates. Energy rates here are mandated through the Ontario Energy Board. And so the government does have the ability to step in and help Ontarians here. The lack of action, again, whether it's on energy or whether that's on auto insurance rates, is really disappointing, especially during a pandemic where, as you've aptly pointed out, people are not working, they are not earning an income. These types of expenses could be minimized, they can be reduced in some instances, that makes it easier for Ontarians and takes away some of the stress and anxiety a lot of people are feeling at the moment. So we have pushed the government, and we will continue to push the government on that issue of hydro and energy rates in the province of Ontario.
Thank you very much, Sarah. It was an absolute pleasure talking to you. As and when we see an issue brought up in the parliament in Ontario by NDP, we are going to give you a call again to discuss with you. Meanwhile, all the best and God bless.
Thank you so much for having me on. And I just want to remind all the listeners, if you have a question or concern, please don't hesitate to call my office. I can be reached at 905-454-1233. And just before I go, I'd love to say Eid Mubarak in advance to everyone.
Thank you very much. That's very sweet of you.
Take care and enjoy the rest of your day and be safe.
You too. Thank you.
جب آپ یہاں بیٹھی ہیں تو میرا خیال وی مے ایز ویل ٹیک ایڈوانٹیج آف یور نیوز. سو
ٹھیک ہے جی, ہم کر لیتے ہیں. اچھا تو ماجد بھائی, آپ آج بڑے مجھے خوش نظر آ رہے ہیں. اس خوشی کا راز کیا ہے؟
آلویز
نہیں نہیں, آج کچھ خاص آپ کا چمک رہا ہے. کل میں نے آپ کو کمپلیمنٹ نہیں دیا, کل ماجد بھائی آپ بڑے ہینڈسم لگ رہے تھے. ہاں, آپ نے وہ بلیک شرٹ پہنی تھی اور اوپر وہ جو چیکرڈ, اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, تھوڑے اسمال اسمال تھے, اور اوپر وہ اپنا بلیک بلیزر سا پہنا ہوا تھا. تو یو looked so cool. مگر یو نو آئی ایم سو فل آف مائی سیلف, میں آپ کو کمپلیمنٹ دینا بھول گئی.
تھینک یو تھینک یو. ڈیلیٹ کے
آنکھیں کچھ میری اصل میں کمزور ہو گئی. وہ بالکل اس ہسبینڈ کی طرح, وہ رات کو کوئی دو بجے بیگم صاحبہ کا فون بجانا, تو وہ انہوں نے فون اٹھایا تو بڑا ان کو غصہ آیا, تو بیگم کو اٹھایا انہوں نے, انہوں نے کہا یہ کون ہے پاگل جڑا تینوں جڑا ہے رات ادھی دے ویلے بیوٹیفل بیوٹیفل لکھ کے بھیج رہے ہیں. تو بیوی نے جب دیکھا انہوں نے کہا اے میاں صاحب بیوٹیفل نہیں ہے, اس پہ لکھا ہے بیٹری فل. تو جناب کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے,
دیکھ لیں
دیکھ لیں ایسے ہوتا ہے.
کاریکرم شروع کریں.
ہاں جی, کاریکرم شروع کریں. اچھا جی, ہم پہلے تو اپنے کر لیں کچھ جو ہیں اسپانسرز کا بتا دیں, کیونکہ ان کے بغیر تو ہم آپ کے پاس یہ خبریں نہیں لا سکتے ہیں. اینڈ پلیز ونس اگین آئی ایم ٹیلنگ یو, اف یو وانٹ ٹو لسن ٹو اور جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ اباؤٹ واٹ از لیٹسٹ دیٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ, آپ پلیز ہماری ویب سائٹ پہ جائیے eawaz.com. اس پہ ہم ساری لیٹسٹ خبریں اور بھی بہت کچھ ڈالتے ہیں, تو آپ دیکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. اوکے جی, ہم آپ کو ہر روز ہی بتاتے ہیں تقریباً نیو فاطمہ گروسرز کے بارے میں. ان کے پاس بہت ہی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ ان کو پلیز فون کریں قادر بھائی کو. ان کا نمبر ہے 9058487000. گروسریز آپ کو کرنی ہے تو آپ ان کے پاس ضرور فون کر کے ان سے پوچھ لیں اور ان کے پاس جائیں. مسلم ویلفیئر, ہم آپ کو بہت دنوں سے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی بھی ڈونیشنز ہیں پلیز ان کو دیجیے, کیونکہ یہ بہت سارے کار خیر کرتے ہیں. تو ان کا نمبر ہے 9052819730. اس کے علاوہ ایشین فوڈ سینٹر, اپنی پسند کی سبزیاں چیزیں جو بھی آپ کو چاہیے ہیں. ابھی عید بھی آنے والی ہے, ہم نہیں کہہ رہے آپ سٹاک کریں لیکن کچھ خریدیں, جا کے وہاں سے ضرور اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی. ان کا نمبر ہے 9057931338. اور انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک بہت نیک کام کرتے ہیں, بہت لوگوں کے مفت علاج کرتے ہیں, تو ان کے آپ ویب سائٹ پہ جائیے اور ان کو وزٹ کیجیے indushospital.ca پہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پیسے بھیجنے ہیں تو آپ ایبل ایکسپریس کی خدمات لے سکتے ہیں, اور ان کا جو عمران بھائی کا نمبر ہے 416-230-4444. تو یہ تھے ہمارے کچھ سپانسرز, اور پلیز ونس اگین ہمارے آپ جو ہیں سپانسرز کو بھی سپورٹ کیا کیجئے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہ صرف یہ خبریں لاتے ہیں بلکہ ابھی تک ہم اپنا جو ہے چلا رہے ہیں, اپنا جو بھی حساب کتاب ہمارا ہے. ماجد بھائی کیا ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, ساز و آواز جو ہے اس کی بات ابھی تک بنی ہوئی ہے.
کیا بات ہے,
ہے نا جی. تو آپ اور بنائے رکھیں, ہمارے اسپانسرز کو پلیز ضرور سپورٹ کریں. ٹھیک ہے جناب, ہم یہ خبریں ادھر سے شروع کر رہے ہیں, اور آج ٹروڈو صاحب کچھ ہمیں غصے میں نظر آئے, وہ کم ہی غصے میں ہوتے ہیں لیکن آج وہ نظر آئے, کیونکہ ان کو کچھ بتایا گیا ہے ماجد بھائی کہ یہ جو کمرشل لینڈ لارڈز ہیں یہ اپنے جو ٹیننٹس ہیں ان کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں. تو ٹروڈو صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ آپ کی ہیلپ بھی کر رہی ہے تو پھر 50% تو اگر آپ کو گورنمنٹ اتنا زیادہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو پھر آپ ٹیننٹس کو کیوں تنگ کر رہے ہیں بھائی؟ تو آپ
50% فرام دا گورنمنٹ اینڈ 25% فرام دا ٹیننٹس, سو دے آر اونلی لوزنگ 25%.
جی, تو وہ انہوں نے کہا کہ
حالات میں میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرح کرنا چاہیے.
بالکل ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں ٹیننٹس کو تنگ کر رہے ہیں, تو اس کا آج انہوں نے بڑا سختی سے نوٹس لیا, اور انہوں نے کہا ہم اور بھی رول آؤٹ کر رہے ہیں اپنے پروگرامس, تو آپ پلیز ٹیننٹس کو جو ہے نہ ستائیں. اچھا جی, یہ ان کا یہ بیان دیکھ کے نا, ٹروڈو صاحب کے جو روز ہی میں بیان دیکھتی ہوں نا, مجھے اپنے ملک کے پولیٹیشینز یاد آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں,
وہ کیا کہتے
ہیں, وہ کہتے ہیں او یار میری زمین میرے نام اسلام آباد الاٹ کرو, مینو ایک پجیرو گڈی بھیجو, مینو چار جڑے نے وہ گن مین چاہیے نے. تو ہمارے تو پولیٹیشینز کے اور ہی فنڈے ہیں نا, فنڈے اور ہی ہیں. تو یہ ادھر ٹروڈو صاحب جو ہیں وہ ذرا دوسری طرح کے ہیں, تو یہ بات ہے. اچھا جناب, یہ جی جب سے ہم آپ کو خبریں بتا رہے ہیں کہ ری اوپننگ کی طرف ساری اکانومی جو ہے وہ کینیڈا کی جا رہی ہے, تو اس میں جو ڈاکٹر لارنس لو ہیں उन्होंने भी आज बड़ा सख्ती से इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, अपने शहर जो है खोलते जा रहे हैं, ये स्पाइक जो है केसेस में देखा जा रहा है। खासतौर पर वो पील रीजन की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पील रीजन में, बल्कि उनका जो एक मैं वर्ड है वो मैं आपको सुनाती हूँ, वो कह रहे हैं कि पील रीजन में स्टबनली हाई है रेट्स, जबकि ऑन्टेरियो में हम थोड़ी सी वो बेहतरी देख रहे हैं।
देखिए ना, आप
पील में स्टबनली हाई हैं।
ये देख लेने के पील रीजन की पॉपुलेशन जो है वो 10% ऑफ ऑन्टेरियो
जी,
मगर वहां पर लास्ट फ्यू वीक्स में जो केसेस हुए हैं 20% ऑफ द टोटल केसेस, सो दैट इज अलार्मिंग।
जी जी जी, तभी आज उनके जो ये वर्ड्स थे स्टबनली हाई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो है थोड़ा इकोनॉमी को जो एकदम से जल्दी 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 खोल रहे हैं, थोड़ा इसको स्लो डाउन करें।
मगर और हमारे मेयर ने भी कह दिया ना कि भाई हम I'm not ready to open it.
जी जी जी, ये तो आज उनकी सुबह जो थी, आज वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, वही वर्चुअल जो वो करते हैं हमेशा, पैट्रिक ब्राउन साहब, तो उसमें ये सारे उन्होंने ऑफिशियल्स बुलाए हुए थे, डॉक्टर लॉरेंस लो भी थे उसमें, और वो फायर चीफ भी थे और पुलिस के भी थे, और वो खुद भी बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि किस तरह हमारे लिए मुनासिब है चीजों को खोलना। तो मेरे ख्याल में वो भी जरा जॉन टोरी
जो है ना, वो,
जी
जी
जी, यस 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 यस,
तो मैं देख रहा था उनके नंबर्स ब्रैम्पटन
काफी ज्यादा,
यस आपके ब्रैम्पटन में जो है 1743 केसेस हुए हैं सर।
जी जी, तो हाँ वही मुझे इसीलिए लग रहा था कि जो ब्रैम्पटन के मेयर हैं वो जरा जॉन टोरी वाली लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव टू बी कॉशियस एंड वेरी क्लियर अबाउट व्हाट द क्राइटेरिया ऑफ ओपनिंग शुड बी।
Exactly. तो आई एम विद देम,
एंड वी आर एब्सोल्युटली विद देम जी, बिल्कुल ठीक है ये आप देखें, क्लब फ्रांस की आपने तो खुद ही बात की,
exactly.
उन्होंने खोला तो देखें कितनी तबाही मचना शुरू हो गई है, और बड़ा उसके ऊपर WHO ने भी बड़ा कंसर्न शो किया था कि भाई आप हाउ कम यू नो आप, तो इटली भी जो है, आप इटली भी कह रहा है कि हम भी खोल रहे हैं, हालांकि फ्रांस और इटली और स्पेन ये तो सबसे ज्यादा हिट थे।
मगर मुझे ताज्जुब हो रहा है यहाँ पर शाजे जी, यहाँ पर क्यूबेक का
जी,
कि अगर आप क्यूबेक के नंबर्स देखें तो
बहुत
ऊपर है, 24 आवर्स में
क्यूबेक और ऑन्टेरियो में तो
578 न्यू केसेस और 71 डेथ्स वहां पर, और टोटल डेथ जो है वहां पर 3718 डेथ्स हुई हैं क्यूबेक में। और सब आपके लिए बड़ा अच्छा है, तो दूर जाने की जरूरत नहीं है,
पार्लर्स खोल दिए,
उन्होंने कहा हेयर सलून खोल दिए, हेयर सलून एंड डेंटिस्ट, और 5 to 10 पीपल का उन्होंने बड़ा बढ़ाव दे दिया।
जी जी जी, जी
पहले अलाउ था ना कि 5 people एट ए टाइम एक जगह खड़े हो सकते हैं या खाना खा सकते हैं, मिल सकते हैं, अब उन्होंने कहा कि 10 लोग हो जाए। मगर they are going upwards and how could they,
सबसे ज्यादा तो हिट यही दो provinces है ना, क्यूबेक एंड ऑन्टेरियो,
और क्यूबेक इज द मोस्ट, और वो खोल रहे हैं सर,
और वो खोल रहे हैं, हालांकि जहां पे आप देखें कि केसेस बहुत ही कम है, जैसे न्यू ब्रंसविक वगैरह हैं, येलो नाइफ है, और ये जो मैनिटोबा है उसने कहा कि जी हमारे पास तो अब एक ही शायद कुछ 24 घंटे में केस था, तो मतलब वो भी बड़े कॉशियसली खोल रहे हैं, और ये तो एकदम से पूरा इन्होंने कहा जी हम खोल रहे हैं। और इटली की तो आज मुझे इतनी हैरत हुई सुन के, वो कह रहे हैं जी 3 June से हम सारे अपने एयरपोर्ट्स खोल रहे हैं, और आप देखें एयरपोर्ट्स कितने हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, साथ साथ लोग बैठे हैं, एंड इफ दे गेट क्राउडेड हाउ डेंजरस दे कैन बी।
मगर दैट विल बी ओनली डोमेस्टिक फ्लाइट्स, बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट्स दुनिया भर आने ही दे रहे कोई
दे रहे हाँ, लेकिन फिर भी इवन डोमेस्टिक
दैट इज वेरी डेंजरस,
वेरी डेंजरस, क्योंकि यही तो 3 countries थे जो सबसे ज्यादा, मतलब अमेरिका में तो अब हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन इनिशियली तो यही कंट्रीज थे जिनमें
स्पेन
इटली फ्रांस
जो
कम है, फिर यूके एंड देन यूएसए में फिर ऐसे एकदम से स्पाइक होना शुरू हुआ, तो फिर भी इन्होंने ये ऐसे कहा। बहरहाल एनीवेज आई वाज सरप्राइज्ड, उनकी मर्जी है। अच्छा जी, ये जो हमारे कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं थेरेसा मे जो हैं, वो कह रही हैं कि आप अगर खुल भी रही हैं यहाँ पे ऑन्टेरियो में, और जो फेडरल लेवल पे भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोविंसेस जो हैं खोल रहे हैं, तो आप एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, अगर आप डिस्टेंसेज नहीं भी रख सकते हैं तो आप अपने मास्क ज़रूर पहनें।
Exactly.
और यही आज TTC ने भी कहा है कि TTC के अंदर मास्क के बगैर आप ना बैठें, इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस।
तो यानी I agree with them.
जी बिल्कुल, तो ये जनाब न्यू नॉर्म, जैसे आप हर वक्त कहते हैं, तो ये अब जनाब न्यू नॉर्म होएगा कि जहां भी आपने जाना है, मुझे तो लग रहा है कि
फेस कवरिंग की जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ये बड़ा वो होता है कि
जी
आप लोग अभी थोड़े दिन पहले कितना मजाक उड़ा रहे थे, नॉट आप, मैं शाजिद जी आपकी बात ही कर रहा हूँ, मैं इन जनरल पब्लिक की यहाँ पर, फेस कवरिंग में ये नहीं होना चाहिए, उनकी तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए, उनको हर जगह जाने के लिए
शक्ल नजर आनी चाहिए,
शक्ल नजर आनी चाहिए. और अब वो दे आर इंसिस्टिंग ऑन फेस कवरिंग नॉट ओनली फॉर वुमेन बट मेन टू.
अरे इन अ प्लेस लाइक फ्रांस जिन्होंने के निकाब बैन किया था, आप देखें जरा.
तो फेस कवरिंग के बगैर जी मस्त कर रहे हैं वो.
और यही वो क्यूबेक है जो के कहता था कि अगर आपके ये जो आप ट्रेडिशनल गियर्स पहनते हैं, निकाब करते हैं या अपनी पगड़ी लगाते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, तो आपको तो जनाब गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगे.
हाँ जी,
हाँ जी,
अब तो गवर्नमेंट जॉब वाले भी पहन के आएंगे,
पहन के आएंगे ना, गोरे भी पहनेंगे. देखें कैसे चीजें चेंज होती हैं. तो जनाब ये है इसकी. अच्छा जी, स्टैट्स कैनेडा की आज आपने रिपोर्ट जरूर देखी होगी, बड़ी खतरनाक आई है. वो कह रहे हैं कि जो अप्रैल में इन्फ्लेशन रेट जो था वो नेगेटिव में चला गया है.
yes.
और अप्रैल में जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो 0.2% फॉल की हैं, और इसकी वजह ये है कि गैसोलीन की प्राइसेस जो हैं वो उन्होंने भी नोज डाइव किया है. तो ईयर ऑन ईयर जो डिक्लाइन हम देख रहे हैं उसकी वजह से, तो ये एक बड़ी जो है खतरनाक खबर है. वही जो अभी हम क्वेश्चंस पूछ भी रहे थे माजिद भाई, इकोनॉमी और उन चीज़ों के बारे में, इन दोनों से ही, जो हमारे अभी आए हुए थे मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट जो थे उनसे. अच्छा जी, ये अब चूंकि लोगों का शायद मुझे लग रहा है दिमाग शायद खराब हो रहा है या ठीक हो रहा है, या आप डिसाइड करें. क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं जनाब.
बहुत दिनों से बैठे हुए थे घरों में,
तो एडवेंचर उनको चाहिए. हाँ, तो ये सारे थ्रिल शेकर्स जो हैं ये अब बाहर आ गए हैं मार्केट में, बैक टू बिजनेस. और ये तीन शूटिंग्स हुई हैं जी ओवरनाइट टोरंटो के अंदर, और उसमें कुछ लोग जो हैं वो जख्मी भी हो गए, कुछ को हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट किया गया है. तो दिस वाज अ ह्यूज सोर्स ऑफ कंसर्न.
खराब हो गए हैं घर में बैठे बैठे ना. देखिए पहले जो शूटिंग होती थी उसमें दो तीन गुजर गए होते थे, मगर आजकल जो शूटिंग हो रही है उसमें जख्मी हो रहे हैं, वो मतलब उनके निशाने खराब हो गए.
आप जो है ना मजद भाई बड़े अपसेटिस्ट हैं. आपकी बात से ना मुझे एक लतीफा याद आ गया. हमारे पंजाब से ना एक लड़का, कोई वो शुरू शुरू के दिनों में जो जाते थे ना अमरीका बेचारे, वो उधर पहुंचा तो उसको कोई हॉलीवुड की फिल्म में कोई उसको काम शाम मिले, तो उसने आके पाकिस्तान में बड़ी शो मारी. ओ जी मैं तो हूं हॉलीवुड दी फिल्मों में काम कर रहे हैं. तो कौन सी फिल्म में आयो जी? इस फिल्म में आयो. अच्छा जी, वो लोगों ने पूरी पूरी फिल्म देख ली तो वो कहने लगे ओए तू किथे से, तू तो सानू नजर ही नहीं आया. कहंदा वो जिसने गोली मार के लिटाया सी वो मैं ही सा. तो जनाब वही है, ये गोली मार मार के ना लोगों को लटाना ये भूल गए हैं.
हाँ, तो बस वो
ये बस दूर दूर से मार रहे हैं.
लेटा हुआ बंदा वही था.
हाँ वही था. ऐसे हो रहे हैं. अच्छा जी ये है. अच्छा इसके बाद जी वो जो आपने कल बड़ा अफसोस का वाकया सुनाया था मार्कम फायर जो है.
yes.
उसमें वो बच्चा जो है, तो वो एक उनको बॉडी मिली है वहां पे पुलिस.
yes.
को तो अब वो कह नहीं सक रहे हैं क्योंकि वो जो बच्चा था छोटा 12 साल का आरान, उनकी माँ और दो बच्चे जो थे वो निकल गए थे वहां से.
हाँ.
लेकिन ये बच्चा वॉज, जैसे पुलिस की अगर हम जुबान बोलें तो वो कहते हैं जी अनअकाउंटेड फॉर, यानी मिल नहीं पाया वो.
सही बात.
तो अब वो उनको एक वहां पे लाश मिली है, तो अब उसको वो कह रहे हैं कि
आइडेंटिफाई
करेंगे कि क्या वो ये बच्चा है या कोई और है. अच्छा जी इसके अलावा जनाब, एक बहुत दिनों से ब्रेकिंस भी हो रही थी टोरंटो के अंदर, तो आज पुलिस ने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है, 25 ईयर ओल्ड कायरॉन आइजैक. इसको उन्होंने पकड़ा है और वो कह रहे हैं जी हाँ, आपने सुना होगा इसके बारे में. तो वो कह रहे हैं जी कि ये बड़ा तेज है, ये क्या करता है ना, ये भेस बदल लेता है अपने, ये भेस बदल बदल के डाके मार रहा है.
डिफरेंट डिफरेंट किस्म के अपने विग्स पहन के आ रहा
है, विग्स पहन के आ रहा है और वैसे कर रहा है. तो ये इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि कहीं कोई तस्वीर वो जो थे कैमराज उसमें नजर आ रही थी कहीं पे कोई, तो अब ये जो है पकड़ा गया. अच्छा जी ये आज जरा इंटरेस्टिंग थी खबर, तो इसलिए मैंने कहा ये जरा आपके साथ शेयर जरूर की जाए जनाब. अब दुनिया कैसे बदल रही है ना, तो हंसी आती है ये खबरें देख के. सिंगापुर के अंदर जनाब एक ड्रग कॉन्विक्ट को डेथ सेंटेंस जूम वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके थ्रू दी गई है.
क्या बात है.
वो जो लड़का था वो तो जेल में ही था और वो जो जजेस और लॉयर्स वो सारे थे वो अपने अपने जो है वो चेंबर्स में बैठे हुए थे, और उधर से जज ने जो है अपना वो जो है फाइनली डिसीजन सुनाया.
हाँ.
तो वो उसका लॉयर भी अपने वो तो इस तरह जनाब जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग.
क्या बात है.
तो जनाब उससे ये ऐसे हुए.
टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही
है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है. ठीक है जी. अच्छा ये अभी अरफा बाजी बात कर रहे थे कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, उन्होंने कहा है कि द कोरोना वायरस कमिंग फ्रॉम चाइना इज नॉट दैट लीथल द वन कमिंग फ्रॉम, क्योंकि उनका कहना ये है कि हमारे मुल्क में कोई केस नहीं था. कोई केस नहीं था। अगर आपने देखा हो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर भी, तो वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पोरस है, तो काफ़ी लोग, उनका कहने का मतलब ये था कि इंडिया से अब आ रहे हैं हमारे मुल्क में, तो जैसे ही वो आते हैं तो अपने साथ वो ये लेकर आते हैं, और ये जो किस्म है वायरस की ये डेडली है, और अब हमारे मुल्क में केसेस 400 से ऊपर चले गए हैं, वेयर एज शुरू में एक भी नहीं था। तो इसलिए उनका बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न है, और जाहिर है इंडिया ने इसके ऊपर बड़ा बुरा मनाया है, और उन्होंने कहा है कि भाई ये किस तरह का बयान दिया आपने। अच्छा देखें ये मल्टीनेशनल्स कैसे काम करती हैं। मल्टीनेशनल ये जो जॉनसन एंड जॉनसन है, आपको पता है इनका टेलकम पाउडर जो था यहाँ पे हेल्थ कैनेडा ने भी और अमेरिका में भी जब उसको देखा गया, तो उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं। तो बहुत अरसे से ये स्ट्रगल चल रही थी और ये जो है इसके ऊपर काम हो रहा था, तो अब फाइनली जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा जी हमारा जो टेलकम पाउडर है जो बच्चों के लिए हम देते थे वो हम कैनेडा और यूएसए में तो बैन कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया में हम बेचते रहेंगे।
पाकिस्तान में चलेगा?
हाँ पाकिस्तान में तो खूब चलेगा, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी है ना उसकी तो हर बंदा जो है
तो बहुत मशहूर है,
बहुत मशहूर है सर। हम खुद, हमारी अपनी माँ लगाती थी टेलकम पर, हमारे सारे वो बेबी जॉनसन की चीजें होती थी, अब माँ हमारी यूज करती थी।
देखें किसी तरह तो आप इतनी अच्छी है
कुछ पता नहीं कल कैंसर डिटेक्ट हो जाए सर, तो इसलिए डरना चाहिए। तो जनाब ये अच्छा जी, आज लड़ाई चाइना और ताइवान के बीच में जरा ठन गई है, क्योंकि चाइना, कल भी हमने ये खबर सुनाई थी, तो चाइना कह रहा है कि ताइवान को अब एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जो है WHO और बाकी के यूनाइटेड नेशंस के अदारे कैसे बुला रहे हैं। वहाँ पे भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और वहाँ पे वो जो लेडी हैं साई वो जीती थी वहाँ पे, तो अब उनके बारे में चाइना कह रहा है कि ये तो हमारा प्रोविंस है एक, और हम तो ऐसे इनको इजाजत ही नहीं दे सकते, हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते कि इसको ऐसा सेपरेट कंट्री जो है वो किया जाए। तो ताइवान ने कहा है कि हम एक सेपरेट कंट्री हैं और हमारी सॉवरेनिटी जो है उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अब वहाँ पे कुछ अमेरिकन बेसिस हैं और अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं जी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अब अमेरिकन बेसिस पे कितना असला और तैयारे और क्या कुछ पड़ा हुआ है कि इफ़ चाइना का ऑनस्लॉट आ जाता है तो वो उसको कैसे फेस करेंगे और कितना लड़ेंगे।
मगर यू नो व्हाट, चाइना अपने लिहाज से सही कह रहा है कि वो उनके पास 99 इयर्स की लीज थी और जब लीज खत्म हुई तो इट बिकेम देयर प्रोविंस।
हाँ जी ठीक है,
तो अब उसको आजाद तो नहीं किया, वो अपना प्रोविंस वापस ले रहे हैं, तो वापस उन्होंने ले लिया।
हाँ,
तो
हाँ,
अब किस चीज का झगड़ा है,
झगड़ा है वो ये बात है। लेकिन वो दूसरी तरफ फिर आपको पता ना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो अब इतनी हीटेड थी बात ये चल रही थी, तो माइक पोम्पियो साहब ने भी जी अपनी भाजी बीच में मार दी, और माइक पोम्पियो साहब ने कहा जी हम तो बड़े आपसे इंस्पायर्ड हैं ताइवान से, एंड यू हैव डन सच अ ग्रेट जॉब ड्यूरिंग COVID-19 एंड ऑल दैट, एंड हम आपके साथ खड़े हैं।
वेरी गुड,
अब देखें ना ये तो फिर ऐसे हो रहा है ना फिर अब।
वेरी गुड
ना जी, तो अब इनको क्या जरूरत
है? साथ हैं जी।
हाँ जी आप मेरे साथ हैं?
हाँ पोम्पियो के साथ हैं जी।
अच्छा जी बिल्कुल ठीक है,
हमारे नेबर है पोम्पियो और ट्रंप साहब, उनके साथ
हैं। अंकल सैम को सलाम।
हाँ वालेकुम सलाम।
अच्छा जी, अच्छा जनाब ये जो हुआ था 9/11 जो हुआ था 2001 में यूएसए के अंदर, आपको पता ही है सितंबर के महीने में वो जो अटैक्स हुए थे और जो तैयारे आके उन्होंने उनकी बिल्डिंग्स पे मारे और बहुत सारे हो गए, उनका एक जो था एक सस्पेक्ट जो था ज़करियास मोसुई, इसको जो थी पहले डेथ सेंटेंस दी गई थी और फिर उसको फेडरल कोर्ट में कोलोराडो में रखा गया था ऑन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा आज उसका ना एक बयान सामने आया है और उसने कहा है, उस वक्त तो वो बड़ा डाई हार्ट था और उस वक्त वो कहता था कि नहीं जिहाद होना चाहिए और मैं तो बड़ा जो हूँ उसामा बिन लादेन का जो है मैं एडमायर करता हूँ, और उसने कोर्ट में खड़े होकर बड़ा मजाक अमेरिकन सिस्टम का उड़ाया था और उन्होंने कहा था यू वुड नेवर बी एबल टू फाइंड उसामा बिन लादेन और इस तरह की बातें की थी। अच्छा आज जब उसका बयान एक वीडियो उसमें आया है ना, तो उसमें वो कह रहा है कि आई डिटेस्ट उसामा बिन लादेन, ये आइसिस, ये तालिबान, ये सब लोग गलत हैं, आप लोग जो हैं अपनी यूथ को कह रहा है, मुस्लिम यूथ को, कि आप इनके रास्ते पे ना चलें। अच्छा इसको इसलिए पकड़ लिया था, इसकी जो थी ना पहले अगस्त में इसको पकड़ा था, अगस्त में इसको सस्पिशन के ऊपर FBI ने पकड़ा था और इससे क्वेश्चनिंग की थी और इसने कहा जी मुझे तो कुछ नहीं पता ये आप क्या बातें कर रहे हैं, कौन अटैक कर रहा है, आईसिस क्या है, सॉरी तालिबान क्या है, ये है वो है, मुझे नहीं कुछ इनके बारे में पता। तो इसको जब दूसरी बार पकड़ा और सजा उसको इस चीज पे दी कि तुमने मिसगाइड हमें किया, अगर तुम अटैक्स की इंफॉर्मेशन हमको दे देते तो हम वो अटैक्स रोक सकते थे।
सही।
तो अब आज उस लड़के ने जी ये बयान दिया है, लेकिन अमेरिका के अंदर जनरल सेंटीमेंट यही है कि बेशक ये बड़ा अरसा जेल में रहा है और उसकी बड़ी ब्रेन वॉशिंग की गई है, लेकिन जो टेररिस्ट होता है वो टेररिस्ट ही होता है, हम इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो नहीं करते,
ट्रस्ट
नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, शायद रिफॉर्म हो गया है और लोगों को जो है वो अगर वो माफी मांग लें तो उनको देनी भी चाहिए, जरा थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। तो अब ये दो तरह के वहां पर जो है डिफरेंट वो आ रहे हैं। अच्छा जी, ये ट्रंप साहब ने अपना रेट्रिक जो है वो हाई रखा हुआ है चाइना के अगेंस्ट, और वो कह रहे हैं कि तुम जो हो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर मैस वर्ल्ड वाइड किलिंग। तो जो है वो तो, और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ ये बल्कि तुम्हारी इनकॉम्पिटेंस की वजह से इतने लोग मर गए हैं। तो ज़ाहिर है चाइना को अच्छा नहीं लग रहा, चाइना कह रहा है कि भाई तुम अपनी चीज़ें कमजोरियाँ छुपाने के लिए मेरे पर बार बार वो कर रहे हो। हम आपको बहुत अरसे से, पिछले दो महीने से ही तकरीबन माजिद भाई मॉडर्ना का बता रहे हैं, है ना, अमेरिकन वो जो मॉडर्ना के जो ट्रायल्स चल रहे थे तो वो काफी एनकरेजिंग है। लोगों को जितनों को दिया गया था वो ठीक हो गया, उनको घर भेज दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये काफी सक्सेस, बट दैट अगेन मॉडर्ना ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन नेक्स्ट ईयर से पहले आएगी।
एग्जैक्टली,
ये सिर्फ ट्रायल्स हैं,
मगर वो वैक्सीन का भी नहीं, वो तो दे आर वर्किंग ऑन क्योर।
जी जी, तो वो वैक्सीन क्योर करेगी ना, तभी तो वो रिकवर हो गए हैं लोग और उन्होंने उनको वापस भेज दिया है। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी FDA से वो लेने के लिए सारी परमिशंस एंड एवरीथिंग इट विल टेक सम टाइम। अच्छा जी, आज न्यूयॉर्क के अंदर लोग जो हैं बड़े खुश देखे गए और बीचेस पे बैठे हुए थे, और लेकिन दूर दूर बैठे हुए थे तो इतने वो फनी लग रहे थे, जैसे पहले आप देखते हैं ना अमेरिका में या यूरोप के अंदर बीच का, सारे वो बच्चे माँ बाप बेटे बेटी गुत्थम गुत्थी हुए होते हैं और पानी के अंदर गए होते हैं। तो नहीं जी, आज एक की कुर्सी वहां थी, एक जो था वो ऐसे छतरी लेके जूस लेदर से पी रहा था,
एक डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, तो एक डाइनिंग रूम में, तो एक ड्राइंग
बिल्कुल
में,
बिल्कुल
तो
वैसे
में,
तो वैसे लग रही थी बीचेस।
हाँ जी, बेडरूम में बैठा हुआ है।
सॉरी, पार्क्स जो है उनके आज पार्क्स बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि दूर दूर ऐसे।
देयर इज ओनली फॉर अ वीक, डोंट वरी अबाउट इट, या ही इज गोना कम बैक
अगेन।
आज देखा नहीं आपने पूरे पूरे ओंटेरियो में जो ट्रैफिक है, चाहे वो कोई सा भी हाईवे ले लें, कोई सा भी रोड ले लें, इट लुक्स लाइक COVID, alhamdulillah, never happened. Everybody's out. Everybody's out.
Yes, that's right. When I was coming in the morning, balki pichle 3-4 dino se, during this week, I have noticed ke log kafi bahar nikalne shuru ho gaye hain. Kafi traffic badh gayi hai. अच्छा जनाब, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है एंजेला मर्कल के बारे में, और वो बड़ी जो है इस चीज़ पे जो ट्रंप साहब ने बयान दिया था उसके ऊपर वो हैं ज़रा थोड़ी सी। वो कह रही हैं कि ये जो हम एड कट करने का यूनाइटेड नेशंस के अदारों को बोल रहे हैं ना, इट्स नॉट रियली अ वाइज डिसीजन, पुअर कंट्रीज़ को यही वक्त है कि ज़्यादा एड भी चाहिए, तो इसलिए हम अपनी जो है अपने पैसे जो हैं लोगों को देते रहें। बहुत ही खतरनाक, अगर आपने आज की वीडियोस देखी हो, कल हमने आपको बताया था कि एम्फेन साइक्लोन आ रहा है इंडिया में और बांग्लादेश में, अगर आज आपने उनकी वीडियोस देखी हो तो आपको पता चलेगा लोगों के घर जो हैं उड़ उड़ के, उनकी छतें जा रही हैं और वो गिर गई हैं, कितनी तो इमारतें उसमें बांग्लादेश और स्पेशली वो जो ओडिशा का एरिया है और वो जो इंडिया में है, और काफ़ी वहाँ पर इसने तबाही मचाई है। तो अब जो इंडिया जो है उसमें तो उन्होंने कहा है कि जी हम शायद आर्म्ड फोर्सेज, सॉरी बांग्लादेश ने कहा है कि हम आर्म्ड फोर्सेज की भी हेल्प ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हैं। जनाब, हम हमेशा कहते हैं अपना ख्याल करें, आज सऊदी के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हमें, मुझे पता है ईद आ रही है, मगर प्लीज़ ईद की प्रेयर्स अपने घरों में करें। तो प्लीज़ आप सुने, ज़रा इंसिस्ट ना करें मस्जिद में जाने के लिए। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जी, और वो कह रहे हैं कि 60 मिलियन लोग पॉवर्टी के अंदर चले जाएंगे, और ये जो है इतना बड़ा इंक्रीज, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1998। तो ये अगेन उनकी जो प्लेज है रिच कंट्रीज़ को कि भई आप हमारे साथ काम करते रहें ताकि पॉवर्टी एलिविएशन के हम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम चला सकें, क्योंकि आपकी डोनेशंस पे ये चलाया जा सकता है, क्योंकि उनको बहुत खतरा है कि ट्रंप साहब ने जो कहा है कि मैं पूरी स्लैश कर दूंगा यूनाइटेड नेशंस की जो है फंडिंग, तो ये इसलिए ये बार बार ये जो हैं खबरें जो हैं वो आती जा रही हैं। US ने जी इरानियन इंटीरियर मिनिस्टर को आज बहुत बुरे तरीके से वो हिट किया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो हैं इन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में बैठे हुए और मिनिस्टर होते हुए जिस वक्त झगड़े शुरू हुए थे, एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट ईरान में शुरू हुए थे, उनको सही से संभाला नहीं, जिसमें कि 23 लोग मर गए थे। तो इन्होंने कहा है कि इसको ब्लैक लिस्ट पर डालें। तो मैं ज़रा सर खुजा रही थी, तो मैंने कहा भाई साहब, जो आपने इराक में इतने लोग मार दिए, जो आपने वियतनाम में मार दिए, جو آپ نے افغانستان میں مار دیے اور بھائی صاحب لیبیا میں مار دیے, تو کوئی ان کا نتھنگ اکاؤنٹڈ فار. لیکن یہ جو 23 لوگ ایران میں مر گئے ہیں ٹی, وہ تو انہوں نے بڑا کھینچا. خیر ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے چیز کو, افسوس کی بات ہے, لیکن ایران کو آج انہوں نے بڑا کھینچا. جناب برازیل جو ہے جی, وہ وہی بات ہوتی ہے نا, اے ایف پی کی آج ایک رپورٹ آئی ہے, بہت بڑی ہے وہ, آپ پڑھ سکتے ہیں, اے ایف پی کی رپورٹ ہے. وہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا نا کہ میں ہائیڈرو کلوروکوئن لے رہا ہوں تو میں ٹھیک ہو رہا ہوں, میں ہر روز ایک گولی لے لیتا ہوں. تو آج برازیل نے بھی آج آفیشلی کہہ دیا ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہائیڈرو کلوروکوئن لینی شروع کر دیں ایوری ڈے ڈیلی بیسس پہ. تو ایکسپرٹس نے پوچھا ان سے, اے ایف پی میں انہوں نے والوں نے بہت ڈاکٹرز کے انٹرویوز لیے ہوئے, تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی, ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت گھنونے ہونے والے ہیں, لیکن آپ روزانہ کے طور پہ ایک لے سکتے ہیں اگر آپ کو کووڈ 19 سے دور رہنا ہے. تو جناب اب آپ کی مرضی ہے. اچھا جی, ایکسپرٹس جو ہیں اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلسٹرز ہیں کووڈ 19 کے, جو ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ چائنا میں اور طرح بیہیو کر رہے ہیں, یورپ میں اور طرح بیہیو کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں آپ, رولز رائس جناب
جی,
رولز رائس 90,000 جاب سلیش کر دی ہیں انہوں نے, بڑی دکھ کی خبر تھی. اچھا جی, انڈین ایک ہے میڈیا آؤٹ لیٹ دا وائر, اگر آپ وائر کی اسٹوریز جو ہیں کبھی آپ فالو کرتے ہیں, او مائی گاڈ ماجد بھائی, کل میں دیکھ رہی تھی کہ یو پی کے اندر ایک ٹرک, کیونکہ لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے نا, وہ اپنے گاؤں میں پہنچنا چاہتے ہیں, ایک ٹرک جس کے اندر کووڈ 19 کی لاشیں تھیں, وہ جا رہا تھا تو وہ لوگ بیچارے مائگرینٹس, انہوں نے ان کو روکا تو انہوں نے بٹھا لیا ان کو اس میں. تو وہ دا وائر جو ہے اس نے انڈیا میں وہ جو چیز, وہ ویڈیو جب وائرل کی تو اور بھی بہت سارے, تو وہاں پہ جھارکھنڈ کے جو بلکہ چیف منسٹر تھے ہیمنت سورن, انہوں نے کہا کہ بھئی خدا کے لیے یہ کیا ظلم تم لوگ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو, ایک تو مائگرینٹس کو ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں دے رہے ہو, اوپر سے جو آلریڈی افیکٹڈ ہیں, صرف افیکٹڈ نہیں ہے بلکہ لاشیں ہیں وہ, تو ان کے ساتھ تم نے ان لوگوں کو بٹھا دیا. تو اس کے اوپر آج جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, انہوں نے جو یو پی کے جو چیف منسٹر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ, ان کو کافی کھینچا ہے. لیکن یوگی جی کو بھی وہ ایسے کر دیتے ہیں, کوئی ان کو اعتراض کرتا ہے نا, کوئی ان کے اوپر کرتا ہے, تو وہ عربیوں والا ان کا سٹائل ہے, خلی ولی مینز آئی ڈونٹ کیئر, یو نو, تو وہ ان کو کافی کھینچا ہے. لیکن مطلب وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا, بلکہ الٹا یہ ہوا ہے کہ اب جو پرینکا گاندھی جو ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہم بسیں دے دیتے ہیں کانگریس والے, اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی ان غریب لوگوں کا خیال تو ہم بسیں دے دیتے ہیں. تو انہوں نے بڑی بے شرمی سے کچھ لوگوں نے کہا تھا, کچھ جو لا میکرز تھے بی جے پی کے, انہوں نے کہا ہاں جی ہاں جی پھر آپ بسیں دے دیں. تو انہوں نے اپنے وہ والنٹیئر سے کہا, وہ بسیں لے کر آ گئے. تو آج پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ اگر آپ کو بسیز چاہیے تو ہماری بسیز تیار کھڑی ہوئی ہیں, مائگرنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچائیں, پلیز اجازت دیں ہمیں, ہم لے کے جا سکتے ہیں اگر. تو مائی گاڈ. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آلریڈی 60,00,000 لوگوں کو ان کے ڈیسٹینیشن تک پہنچایا, اور اس کے علاوہ ہم فوڈ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا جی, پاکستان کی طرف جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے زیادہ سے زیادہ ریسورسز جو ہیں کووڈ 19 کی طرف کر رہے ہیں ڈائیورٹ, جیسے کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ورلڈ اکنامک فورم سے بھی ٹیلی کانفرنسنگ کے تھرو باقی لیڈرز کے ساتھ بات کریں گے. تو اسی کانفرنس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے زیادہ جو پیسے ہیں اب اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. تو ان کا کہنے کا یہی مطلب تھا کہ بھئی ہمارے جو لونز وغیرہ ہیں ان کے اوپر ذرا تھوڑی دیا کریں آپ, تھوڑا دیکھیں تھوڑا اس کے اوپر
دیا کریں,
ہاں دیا کریں, ذرا تھوڑا سا سمپتھیٹک آئے رکھیں اس کے اوپر,
دیا کریں,
ہاں دیا کریں, ہمارے پہ رحم کریں, یعنی رحم کریں, رحم کریں, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ شوگر جو کرائسس تھا اس کی ایک رپورٹ بنائی جا رہی ہے اور وہ جلدی پرائم منسٹر صاحب کو کی جائے گی پریزنٹ. حیدرآباد کا جو لیاقت یونیورسٹی ہے جی, انہوں نے بھی کمال کیا ہے, پلازما تھراپی سے کچھ انہوں نے پیشنٹس کو بالکل 100% ٹھیک کر کے کووڈ 19 کے پیشنٹس کو گھر میں بھیجا ہے. تو دیٹ واز اے ویری گڈ نیوز. اچھا جی, بس لاسٹ ہم خبروں پہ پہنچ گئے ہیں, ہماری تین چار اور خبریں رہ گئی ہیں. ہمارے جو عدنان صدیقی صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ابھی جو ایک ڈرامہ تھا جو میں نے پھر سے نہیں دیکھا, جیسے ارطغرل میں نے نہیں دیکھا اسی طرح تم میرے پاس ہو میں نے نہیں دیکھا, تو اس کے جو ہیں بڑے فیمس ہو گئے ہیں. ویسے بھی فیمس تھے, انہوں نے انڈین فلم میں بھی کام کیا تھا اور اس سے پہلے بھی ایم آئی ٹی ہارٹ میں کام کیا تھا, بڑا زبردست, وہ جو ڈینیل پرل پہ بنی تھی. تو انہوں نے جی اب اس کووڈ 19 کے زمانے میں جی پیانو بجانا شروع کر دیا اور بڑا خوبصورت بجایا, تو وہ اتنا وائرل ہو گیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ بجاتے رہا کریں پیانو جو ہے. تو اس پہ عدنان صدیقی نے کہا کہ ہاں میں میوزک سے دور نہیں رہ سکتا, تو بھائی صاحب پھر ایکٹنگ کیوں کر رہے تھے, फिर म्यूजिक ही कर लेते हैं, बहरहाल एनीवेज अच्छी बात है, लोग खुश रहना चाहते हैं। ठीक है जी, कनाडा में जनाब ये जो हमारी रिचेस्ट इवेंट होता है पेप्सी नॉर्थ अमेरिका कप, तकरीबन $1 मिलियन का होता है जनाब, उन्होंने कहा है कि हम अपने जो है मैचेस करेंगे, वो हॉर्स रेसिंग होती है, तो अगस्त 29 को वुडबाइन मोहॉक पार्क में हम ये कर सकते हैं। ये ओरिजिनली तो सेट किया था इसको जून 20th के लिए, लेकिन फिर जाहिर है अब उन्होंने डेट बढ़ा दी, अगस्त 29 कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपनी ट्रेनिंग्स और सेशन शुरू कर देंगे 3 months के लिए इन अ बायो सिक्योर कंडीशन, मींस इनसाइड एंड यू नो ऑल सोशल डिस्टेंसिंग रख के और ये सैनिटाइजर्स यूज करके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम जो है अगस्त में इंग्लैंड का टूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग अब 3 महीने की शुरू करेंगे। हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा ना बारह देखें। स्लोवेनिया जो है वो कह, वो भी कह रहा है, जिस तरह वो जर्मन क्लब ने शुरू कर दिया, उसी तरह स्लोवेनिया भी कह रहा है कि 5 जून से हम अपनी फुटबॉल लीग शुरू कर रहे हैं, तो अब पता नहीं कितना पॉसिबल है। एंड जनाब लास्ट बट नॉट लीस्ट, बियॉन्से बड़े हमारी जो है फेवरेट सिंगर हैं, वो जो हैं 2020 की जो क्लास है उसको ओबामा साहब जो हैं वो और उनकी वाइफ जो हैं वो उससे एड्रेस करेंगी, तो बियॉन्से जो हैं